नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही अहम 1969 के उद्बोधन पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका शीर्षक था धर्म तंत्र का परिष्कार अत्यंत अनिवार्य।
हाँ, इसमें उन्होंने समाज की दो मुख्य शक्तियों पर बात की, राजतंत्र और धर्मतंत्र।
बिल्कुल, उन्होंने कहा कि राजतंत्र मतलब सरकार, वो बाहर से नियंत्रण रखती है, कानून व्यवस्था वगैरह,
और धर्मतंत्र वो व्यक्ति के भीतर काम करता है, नैतिकता, अच्छे विचार, सद्गुण जगाता है।
हाँ, जैसे गाड़ी के दो पहिए, दोनों का साथ चलना जरूरी है समाज के लिए।
इसी संदर्भ में पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा दिया था।
हाँ, वो 56 लाख वाला आंकड़ा। उन्होंने बताया कि उस समय मतलब 1969 के आसपास भारत में करीब 56 लाख लोग थे जो धर्म के माध्यम से ही अपनी आजीविका चलाते थे।
56 लाख, ये तो उस समय के सरकारी कर्मचारियों से भी ज्यादा थे, है ना? हाँ, सरकारी कर्मचारी तो करीब 40 लाख ही थे। तो गुरुदेव ये दिखाना चाह रहे थे कि हमारे पास सरकार से भी बड़ी एक आध्यात्मिक वर्कफोर्स है।
लेकिन उनका कहना था कि इस शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा।
बिल्कुल, यही उनकी चिंता थी। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या अगर ये सही दिशा में काम करती
तो क्या नहीं हो सकता था। उन्होंने उदाहरण भी दिए थे, जैसे बुद्ध के 2.5 लाख भिक्षु।
हाँ, या ईसाइयों के लगभग 1 लाख पादरी, उन्होंने कैसे अपने विचार दुनिया भर में फैलाए।
तो उस हिसाब से तो भारत की ये 56 लाख की शक्ति तो मतलब कमाल कर सकती थी,
दुनिया हिला सकती थी।
सही कहा। लेकिन गुरुदेव देख रहे थे कि ये शक्ति या तो बेकार जा रही है या फिर गलत दिशा में लग रही है।
गलत दिशा मतलब किस तरह के अपव्यय की बात कर रहे थे वो?
उन्होंने इशारा किया धर्म के नाम पर होने वाले फिजूल खर्ची की तरफ, जैसे मंदिरों में लाखों का भोग चढ़ाना।
हाँ, या फिर सोमवती अमावस्या जैसे स्नान पर्वों पर करोड़ों का खर्च। जी, या फिर जो लीलाएं वगैरह होती हैं वो सिर्फ मनोरंजन बनकर रह गई हैं, मतलब भावना कम, दिखावा ज्यादा।
इसी को उन्होंने धर्म भावना की जगह धर्म भीरुता कहा था शायद।
बिल्कुल सही, मतलब धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा और समझ के बजाय एक तरह का डर या सिर्फ रस्मादाएगी।
ये बहुत अहम बात है। तो फिर मंदिरों का असल उद्देश्य क्या था गुरुदेव के अनुसार? क्या वो सिर्फ पूजा पाठ की जगहें थीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि प्राचीन काल में मंदिर सिर्फ पूजा या कर्मकांड के केंद्र नहीं थे।
तो क्या थे
वो? तो एक तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र थे। लोक शिक्षण वहीं से होता था।
अच्छा, मतलब शिक्षा भी?
हाँ, ज्ञान चर्चा, सत्संग, कला संगीत का विकास भी मंदिरों से जुड़ा था। पुस्तकालय होते थे, व्यायाम शालाएं होती थी,
और समाज सेवा।
जी हाँ, मंदिर समाज सेवा करने वालों के लिए, लोक सेवियों के लिए एक आधार थे, उनके रहने का, उनके काम करने का स्थान थे।
क्या इसका कोई ठोस ऐतिहासिक उदाहरण भी दिया उन्होंने?
हाँ, उन्होंने समर्थ गुरु रामदास जी का उदाहरण दिया। उन्होंने 700 महावीर मंदिर स्थापित किए थे।
700?
जी, और वो सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे। शिवाजी महाराज के समय में वो जन संगठन, युवाओं को ट्रेनिंग देने के, यहाँ तक कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए संसाधन जुटाने के केंद्र बन गए थे।
मतलब मंदिर असल में जन जागरण और लोक सेवा के बहुत शक्तिशाली केंद्र थे।
बिल्कुल, वो सिर्फ इमारतें नहीं, जीवन संस्थाएं थीं।
तो इस सारे विश्लेषण से पूज्य गुरुदेव का मुख्य संदेश क्या निकल कर आता है? वो क्या समाधान सुझा रहे थे?
उनका साफ कहना था कि धर्म तंत्र की ये जो बिखरी हुई शक्ति है और जो संपत्ति है, उसका दुरुपयोग बंद होना चाहिए,
उसे सही दिशा में लगाना हो।
हाँ, मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को फिर से लोक मंगल, व्यक्ति निर्माण, समाज सेवा का केंद्र बनाना होगा। वो तोड़ने या विरोध करने की बात नहीं कर रहे थे,
बल्कि सुधारने की।
हाँ, उसी मौजूदा ढांचे को सुधार कर बेहतर बनाने की बात कर रहे थे।
यानी उनका मानना था कि अगर ये 56 लाख लोग और धार्मिक संस्थाएं सही दिशा में काम करें तो शायद सरकारी योजनाओं से भी ज्यादा असरदार हो सकते हैं राष्ट्र निर्माण में।
निश्चित रूप से, ये सिर्फ कोई धार्मिक सुधार का एजेंडा नहीं था, ये तो राष्ट्र के कायाकल्प का एक प्रैक्टिकल रास्ता था।
ये एक बहुत बड़ी सोच थी, धर्म को व्यक्तिगत पूजा पाठ से ऊपर उठाकर समाज बदलने का एक माध्यम बनाना।
बिल्कुल।
और यहाँ एक सवाल हमारे मन में भी उठता है, जो शायद पूज्य गुरुदेव के उस उद्बोधन की ही एक तरह से गूंज है, कि क्या आज इतने साल बाद हमारे धार्मिक संस्थान अपनी विशाल शक्ति, संपत्ति और प्रभाव का इस्तेमाल वाकई समाज को नैतिक रूप से उठाने और सच्ची आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए उस तरह से कर सकते हैं जैसा पूज्य गुरुदेव ने सोचा था? ये सोचने वाली बात।